मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 15 अक्टूबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का, विशेष रूप से जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विवेक लिंबेसिया राजकोट गुजरात से और अभिषेक यार्डी, आप भी राजकोट गुजरात से ही हैं। हो सकता है कि दोनों मित्र हों और एक दूसरे को जानते भी हों, और अगर ऐसा है तो ये सचमुच बहुत अच्छा सुयोग है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये दोनों स्टूडेंट जो मित्र भी होंगे, एक दूसरे से परिचित होंगे, यहाँ की बातों पर डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, और डेफिनेटली जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार विवेक और अभिषेक, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे पास मेल आया है, ये है हमारे पंचानन वर्मा जो एकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं। इन्होंने सूचित किया है कि अभी जो प्री के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें पंचानन वर्मा को सफलता प्राप्त हुई है। तो पंचानन, आपको आपके बैचमेट्स की तरफ से, जो यहाँ का बैच है, बैचमेट्स की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से और पूरी एकेडमी की टीम की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत ही सफलता के लिए बधाई, और आगे भी आप सफल होंगे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच पूछे तो जितने भी स्टूडेंट्स ने प्री में क्वालिफाई किया है उन सबको फिलहाल मेरी यही सलाह है कि अब वो पिछली सफलता को बिल्कुल भूल जाएं। वो तो एक एडमिशन कार्ड की तरह है, रियल जो एग्जाम है उसकी शुरुआत अब हो रही है, और अब उन्हें कोई भी, जिसको कहा जाता है कि स्टोन लेफ्ट अनटर्न, कोई भी पत्थर हिलने से नहीं बचना चाहिए। अब आप लोगों का जो पूरा समर्पण है वो मेंस की तैयारी के प्रति होना चाहिए, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो आपके मन की बात हो, चाहे मस्तिष्क की बात हो, चाहे क्षमताओं की बात हो, जितनी भी ये सारी चीजें हैं वो सब के सब आपको फिलहाल कुछ महीनों के लिए सिविल सर्विस के मेंस को समर्पित कर देना चाहिए। और मित्रों, मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूंगा आप सभी को कि बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ें, कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कैसे करेंगे आप जानते हैं, अनसॉल्व्ड पेपर आप लोगों के पास है, उसमें से सिलेक्शन करें और फिर उन पर ज्यादा अच्छे से अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करें। मैं जानता हूं कि इसके बावजूद बहुत से प्रश्न छूटेंगे, छूटेंगे मतलब परीक्षा में लिखने से नहीं, छूटेंगे का मतलब है आपकी तैयारी करने से छूटेंगे। लेकिन यदि आप अपने इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस या सिलेक्टेड टॉपिक्स की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि जिनकी आपने तैयारी नहीं की है उनके बारे में भी लिखकर आने की क्षमता आप में पैदा हो जाएगी। मित्रों, ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि नदी में तो पानी बहता है और वो बहता हुआ पानी आपको दिखाई भी देता है, लेकिन नदी के किनारे जो सूखी रेत फैली हुई दिखाई देती है उसको थोड़ा सा तो खोद कर देखिए, थोड़ा सा ही गड्ढा करेंगे नहीं कि उसमें भी पानी भर जाएगा। ज्ञान का क्षेत्र भी उसी तरीके से है, जो आप मेन जो तैयारी करते हैं किसी टॉपिक पर, डेफिनेटली वो नदी में बहते हुए पानी की तरह होता है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है कि आपने इसके बारे में तैयारी की है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो रिस रिस कर जो उन नदी के तटों के नीचे फैलता चला जा रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। ऊपर से तो लगता है कि सब कुछ कितना सूखा है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी खुदाई करते हैं, थोड़ी सी हाथ से ही खुदाई करके देख लीजिए, पानी आ जाता है। नॉलेज के साथ भी मित्रों बिल्कुल यही होता है। अगर आप बहुत सेलेक्टेड, बहुत अच्छे प्रोमिनेंट टॉपिक्स पर अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी आपने सीधे सीधे तैयारी नहीं की है उनके बारे में भी आप लिख कर आने की स्थिति में होंगे और अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से ही लिख कर आने की स्थिति में होंगे। और मुझे लगता है कि यही रणनीति आपकी सफलता का कारण भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, पंचानन वर्मा आपको बहुत बहुत बधाई। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज अपने सभी श्रोताओं को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा उनकी सच पूछे तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा इस बात के लिए कि पिछले लगभग 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो मेल्स आ रहे हैं, मेल्स की संख्या काफी बढ़ी है, और उसमें इस बात के पक्ष में मेल आ रहे हैं कि जो वीकली क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें बंद न किया जाए, उससे आप लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट को काफी फायदा हो रहा है। इसके अगेंस्ट में मुझे केवल एक ही मेल मिला है और बाकी मैं समझता हूं कि लगभग लगभग 100 मेल इसके पक्ष में आए हैं। मित्रों, जो मैं प्रशंसा कर रहा हूं वो इस बात की नहीं कि आप लोगों ने इस प्रश्न वाले हिस्से को जारी रखने के पक्ष में बात कही है, इसके बारे में बिल्कुल मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं प्रशंसा इस बात की कर रहा हूं कि आप सब अब एक्टिव हैं। अब वो मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, जिन चीजों की आप लोगों को जरूरत है उन चीजों के बारे में आप सतर्क हैं, आप चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू हो, आप उसको दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं कि यार मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई दूसरा लिख देगा, चीजें तो चलती ही रहेंगी। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। सच पूछे तो आपके अंदर ये होने वाले एक परिवर्तन का संकेत है कि नहीं, अब आप थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, थोड़े से कॉन्शस हो गए हैं, आपको जो चीज की जरूरत है उसके लिए जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं, दूसरों पर नहीं छोड़ते। और दोस्तों, हमारे इस उद्देश्य को, हमारी इस तकनीकी को, हमारे इस विचार को हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो अगर आप इसको इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक तरीके से वो दूसरी चीजों पर भी अप्लाई करने लगेगा, और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो मुझे देखकर बेहद खुशी हुई कि आप सब कम से कम उस परिवर्तन के दौर को महसूस कर रहे हैं, और केवल महसूस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। मित्रों, मेरा ये जो ऑडियो है वो आप लोगों के लिए है। जिस दिन आप कहेंगे कि आपके लिए अर्थहीन हो गया है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से उसी दिन उसी क्षण ये ऑडियो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ही जरूरत नहीं है तो फिर किसे जरूरत है। तो जो प्रश्न का भी जो सवाल है वो सिर्फ आपके लिए है, अगर आपको उसकी जरूरत है तो मेरे द्वारा उसे बंद किए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोगों ने उस प्रश्न को जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, जो इज्जत बख्शी है, डेफिनेटली वो इसे और भी मैं समझता हूं कि अच्छा बनाने में मदद करेगी। मेरा भी उत्साहवर्धन हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे और भी कि कैसे अच्छा बना सकता हूं, कैसे आप लोगों के लिए और उपयोगी बना सकता हूं, बना सकूं, इसके लिए मैं विचार करना शुरू कर दूंगा। तो आप निश्चिंत रहें, आप लोगों को वीकली क्वेश्चन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में। दोस्तों, सिविल सर्विस प्री के रिजल्ट के बाद से मैं लगातार कभी स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूं, स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी एड्रेस कर रहा हूं। मुझे आज लगता है कि थोड़ी सी कुछ खरी खोटी बातें भी होनी चाहिए। उपदेश की बातें बहुत होती हैं दोस्तों, आदर्श की बातें भी बहुत होती हैं, लेकिन काश कि हमारे वो आदर्श यथार्थ में बदल पाते, या हम यदि अपने आप को केवल आदर्शों तक सीमित रखते हैं और कुछ करते नहीं है तो हमारे वो आदर्श यथार्थ में परिवर्तित हो जाते। ऐसा होता नहीं है, होता तो तभी है जब हम कुछ करते हैं, और करते भी तब जब कोई बड़ा उसका वैज्ञानिक तरीका हो, उसका व्यवस्थित तरीका हो, तभी जाकर के कुछ होता भी है। कुछ भी हो सकता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है मित्रों, लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, बहुत पसंद भी आता है और तालियों की गड़गड़ाहट भी खूब मिलती है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी गहराई में जब आप जांच करेंगे तो पता लगेगा कि कुछ भी हो सकता है वो तभी होता है जब हम कुछ करते हैं, बैठे बैठे कभी भी कुछ भी नहीं होता। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गए, ज्यादातर लोग सफल नहीं हुए, हर साल यही होता है और हर साल यही होता भी रहेगा, बस फर्क केवल इतना ही है कि अंदर जाने की अनुमति किसको मिलती है, दैट्स ऑल। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी एक दो जिसे जो मैंने कहा है कि खरी खोटी बातें भी होनी चाहिए, और आपको मालूम है कि जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सब अपना अपना मूल्यांकन करें, तो उसमें लिखे उसके लिए मैंने स्पेशली एक शब्द यूज किया था, निर्मम मूल्यांकन, बहुत तटस्थ होकर, अपने प्रति थोड़ा सा निर्दयी होकर के, जैसे कि डॉक्टर अपना ही ऑपरेशन कर रहा हो, अपने ही हाथ से अपना ऑपरेशन कर रहा हो। मित्रों, हम परिवार पेरेंट्स वालों को दोष दे सकते हैं, हम समाज को दोष दे सकते हैं, यूपीएससी को दोष दे सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोष दे सकते हैं। दोष देने से ज्यादा बेहतर है कि आप इवेलुएट करें, इवेलुएट इस रूप में करें कि अगर पेरेंट्स का कोई प्रेशर है तो क्यों है, कितना है, और उसमें देखें कि हम कितने जिम्मेदार हैं। कोचिंग में आप गए, आपने एक लंबे समय तक पढ़ाई की, एक बहुत बड़ी रकम भी आपने खर्च की, उसी कोचिंग में जाने वाले कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कुछ सेलेक्ट, ज्यादातर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर वो देखें कि फिर मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, बजाय इसके कि हम कोचिंग को दोष दें। हाँ, ये बात अलग है कि जाने से पहले आप उसका अच्छी तरह से मूल्यांकन करें कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि कोई भी एक चीज चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, हर के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। मान लीजिए एक किसान है, तो किसान सोनार के यहां जाकर के सोने के हल नहीं बनवाएगा, सोने की खुरपी और कुदालियां नहीं बनवाएगा, हालांकि वो हजार गुना लाखों गुना महंगी चीज है, उसके काम की नहीं है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी मूल्यवान हो। तो ये होता है मित्रों, तो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके लिए कितने काम का है, और दूसरी बात, वो काम का है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उससे कितना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसी में जाने वाले कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ ज्यादातर सेलेक्ट नहीं होते, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं भी नहीं जाते और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये अलग अलग डायमेंशन है, आपको इन पर बड़े यथार्थवादी तरीके से विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, आप 4-5 साल से लगातार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स का निराश होना तो बिल्कुल जायज है। आप देख सोचिए कि आप जब वहां से अपने घर से तैयारी के लिए चले थे, तो पेरेंट्स से आपने कुछ वायदे किए होंगे, कुछ वायदे किए होंगे कि मुझे साल भर दे दो, मुझे 2 साल दे दो, मुझे 3 साल दे दो, और मैं आईएएस निकालूंगा, नहीं तो स्टेट सिविल सर्विस निकालूंगा, नहीं तो बैंक का एग्जाम निकालूंगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा, इस तरह के वायदे किए होंगे। आपके मूल्यांकन में यह भी शामिल होना चाहिए कि आपने उन वायदों में कितना पूरा किया, और अगर वो वायदे पूरे नहीं किए तो क्यों नहीं किए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अगर आपको इवेलुएट करेंगे कि आप अब कहां तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली उनको वो वायदा याद है, वो आपसे वो उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आप उन्हें संतुष्ट कीजिए कि आप उन वायदों को पूरा करने में सफल क्यों नहीं रहे हैं। फिर दोस्तों, यह भी है कि आप अगर 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को इवेलुएट कीजिए कि आपने क्या पाया है और क्या खोया है। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी करने के बाद पहली साल आप कहां थे, दूसरे साल आप कहां थे, तीसरे साल आप कहां थे, और पता अगर आपको यह लगता है कि आप 5-4 साल भी वही हैं जहां कि आप पहले साल थे, तो फिर अपने बारे में विचार कीजिए कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरे लिए है या नहीं है, अपने लिए दूसरा क्षेत्र भी चुनिए। और फिर इस बात पर भी सोचिए कि जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी है, आप इसको इस रूप में इवेलुएट भर मत कीजिए कि मैं सिविल सर्वेंट बन पाया या नहीं बन पाया, मुझे लगता है कि वो फिर एक बहुत छोटा दृष्टिकोण होगा अपना मूल्यांकन करने का, अपनी सफलता और असफलताओं का जायजा लेने का। आपको इस रूप में भी करना चाहिए कि मैं तैयारी तो सिविल सर्विस की कर रहा था, लेकिन इसके बहाने मेरी और दूसरी कितनी तरह की तैयारियां हो गई हैं, और जब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरी दूसरी तरह की भी कुछ तैयारियां हो गई हैं, तो मैंने उसका कितना इस्तेमाल किया, मैं किन किन एग्जाम में अपीयर हुआ। मित्रों, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ सिविल सर्विस के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप दूसरे भी एग्जाम दें, और अगर आप लोगों को सफलता मिलती है तो उसे ज्वाइन भी करें। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट वे होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मित्रों, इसके बारे में निश्चित कुछ नहीं है, गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, और आप भी अपने बारे में बिल्कुल गारंटी मत दीजिए। हां, आत्मविश्वास बनाए रखिए कि आई विल गेट इट, लेकिन यह नहीं कि मैं पा ही जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा डाउट की गुंजाइश रखिए। जैसे चाय, अंग्रेजी में कहावत है, चाय के प्याले और ओंट के बीच में अभी थोड़ा सा स्पेस तो है, हो सकता है कि इस बीच में मक्खी गिर जाए और चाय बेकार हो जाए। वी डोंट नो, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिसे मैंने खरी खोटी का नाम दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ये जरूरी भी होता है और शायद सबसे जरूरी भी होता है। चिकनी चुपड़ी बातें कुछ समय के लिए आपको मरहम का काम कर सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि वो केवल जख्म को थोड़ी देर के लिए मुलायम कर देंगी, खुजलाहट दर्द उसको थोड़ी देर के लिए कम कर देंगी, लेकिन जख्म को खत्म नहीं करेंगे। खत्म तो दवाई ही करेगी, और जब आप दवाई लगाएंगे तो वो जख्म चरपर आएगा, दर्द देगा, दर्द बढ़ा देगा। तो मित्रों, मैंने कुछ बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप लोगों से बात की है, बजाय इसके कि हम इस उस फलाने फलाने को दोष दें जिसमें हमारे अपने लोगों से लेकर के बाहर के सब लोग शामिल हैं। हम देखें कि हम एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें कि क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या किया जाना चाहिए था और हमने नहीं किया, अब हम कहाँ हैं, आगे हम कहां तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि 3-4 साल की तैयारी के बाद, 3-4 साल के एग्जाम देने के बाद, कम से कम इतना अनुमान तो हमें अपने आप के बारे में सही सही लगाने की क्षमता आ ही जाना चाहिए, और लगाया भी जाना चाहिए, और लगाने के बाद फिर उसी के अनुसार भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस भाग में बस इतना ही। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पर, जो AIR न्यूज का पार्ट है। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में सच पूछे तो कोई खास नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से जो कुछ दो न्यूज जो खबरें थी उनके माध्यम से मैं कुछ चर्चा आप लोगों से जरूर करना चाहूंगा, कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहूंगा, और डेफिनेटली ये जो थॉट्स होंगे आपके सिविल सर्विस के लिहाज से ही होंगे। एक तो आपने खबर पढ़ी सुनी भी और आज अखबारों में पढ़ी भी होगी, सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री निवास पर गए थे और प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी ने जो एक सबसे एक बड़ी बात कही है, और मैं समझता हूं कि वो आई ओपनर है और कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कदम भी है, उन्होंने यही कहा है कि 23 जनवरी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि है 23 जनवरी, उस डेट पर वो और भी जो दूसरे सरकारी फाइल्स हैं वो उन्हें सामने लाएंगे, और दूसरे देशों से भी इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि वे भी इसके बारे में जो भी उनके पास कागजात हैं उनको रिवील करें, सामने लाएं। एक बात उन्होंने और भी बड़ी बात कही कि किसी भी हालत में इतिहास का गला नहीं घोटा जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो किसी भी हालत में इतिहास का गला नहीं घोटा जाना चाहिए, इसको तो आप निबंध का टॉपिक मान लीजिए, इस पर आप लोग निबंध लिखना शुरू कीजिए, क्यों नहीं घोटा जाना चाहिए, इतिहास क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर सोचिए, इतिहास क्या होता है, इतिहास के गला घोट देने से क्या होता है, इतिहास को क्यों बचाए रखा जाना चाहिए, इतिहास किस तरह से हमारे सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में मददगार होता है, होता भी है या नहीं होता है। तो एक बहुत मजेदार और बहुत ही प्रभावशाली ये वाक्य है, और मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, आप देखेंगे कि इतिहास के बारे में आपकी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी। और कुछ समय पहले मैंने आपसे चर्चा भी की थी, खासकर विंस्टन चर्चिल और जवाहरलाल नेहरू को लेकर के। विंस्टन चर्चिल की तो मैंने चर्चा नहीं की थी, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मैंने जरूर बताया था। विंस्टन चर्चिल भी एक बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि के लीडर थे, और आप लोगों को मालूम होगा कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी सार्वजनिक किए जा रहे हैं। 30,000 बक्सों में उनके डॉक्यूमेंट्स भरे हुए, या 3,000 बक्सों में, मैं थोड़ा सा डेटा में गड़बड़ कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। विंस्टन चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि के व्यक्ति थे। एक तो ये टॉपिक है फ्रेंड्स। दूसरा, मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान रहा है, खासकर फ्रीडम मूवमेंट के में, उसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपने ये भी देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सुना है आपने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दूसरे देशों से वो अनुरोध करेंगे। तो जो इनके फ्रीडम मूवमेंट के जब आप योगदान को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस रशिया से उनका जुड़ाव रहा, जर्मनी से उनका जुड़ाव रहा, शायद थोड़ा सा इटली से भी रहा है, सिंगापुर से रहा, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ इनके कनेक्शंस रहे हैं, और इनकी मदद से वो देश को आजाद कराना चाहते थे, क्योंकि नेहरू, खासकर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के जो मूल सिद्धांत थे देश को आजाद कराने के मामले में, जो अंतर था वो ये था कि गांधी जी अहिंसा के माध्यम से चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति के माध्यम से चाहते थे, और खासकर जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगने लगा था कि एक तरफ आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरफ तो आपके इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया ये सब देश थे और दूसरी तरफ जापान, जर्मनी, इटली ये सब देश थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि ये जो इंग्लैंड के विरुद्ध जो ग्रुप लड़ रहा है जिसमें जर्मनी है, इटली है, रशिया है, अगर इनके साथ हम मिल जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहे हैं तो ये भारत में भी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करेंगे और ये एक अच्छा मौका है जिसको कह लीजिए कि लोहा गर्म है, अभी इस पर चोट करके देश को आजादी दिलाई जा सकती थी। ये उनकी अपनी थ्योरी थी। अनफॉर्चुनेट रहा कि 1945 के बाद एक विमान दुर्घटना में फिर वो रहे, गायब हुए, डेथ हुई, क्या हुई वो फिर एक रहस्यमय स्थिति बन गई है और अब शायद लग रहा है कि जब फाइलें खुलेंगी, डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तब स्थिति क्लियर हो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वास्तव में क्या घटना घटी। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी बात है मित्रों। और जो सबसे बड़ी बात है, आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो ये कि सुभाष चंद्र बोस मेरी समझ से शायद आज़ादी से पहले के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ICS के एग्जाम में फोर्थ रैंक मिली थी। फोर्थ रैंक किसी भारतीय को जानबूझकर दिया भी नहीं जाता था, मतलब वो अगर वो आ भी रहा है, टॉप भी कर रहा है तो उसको पीछे कर दिया जाता था क्योंकि वो ब्रिटेन वालों की अपनी एक इज्जत का सवाल था, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न था। ये भी कहा जाता है कि बेसिकली तो सुभाष चंद्र बोस जी को की सेकेंड रैंक थी लेकिन उन्हें फोर्थ रैंक मिली। और लेकिन कुछ ही समय के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि नहीं, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं, सिविल सर्वेंट बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। और वो छोड़ छाड़ करके फिर भारत आ गए और फिर कलकत्ता में जो देशबंधु चित्रंजन दास थे उनसे उनका पत्र व्यवहार हुआ, मैंने तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो उन्होंने उनको बुला लिया और इसके बाद उनको सेक्रेटरी बना दिया नगर पालिका का, जो सबसे कम उम्र में बनने वाले नगर निगम के सेक्रेटरी थे। और फिर उस समय भी उन्होंने कई बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए। तो मित्रों ये थोड़ी सी बातें हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आज़ादी की कहानी का और आप लोगों को मालूम होना चाहिए और ये अच्छा मौका है जब आप इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। मित्रों जो दूसरी जो खबर थी IR में जिसे हम अपने सिविल सर्विस के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं वो दाल की कीमतों को लेकर के था। मैं दाल की कीमतों की आपसे बात नहीं करूंगा बल्कि इसके माध्यम से एक अर्थशास्त्र की बात करूंगा जिसे मैं एक तरह से अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहता हूं या व्यावहारिक अर्थशास्त्र कहता हूं, क्योंकि अब सिविल सर्विस में अर्थशास्त्र पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, तो आप देखेंगे कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही व्यावहारिक अर्थशास्त्र से प्रश्न आते हैं, उसका आप सिद्धांतों से और नियमों से और कानूनों से और प्रकारों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। और ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन भी है और सच पूछे तो इसी से जो स्टूडेंट की सही समझ है विषय पर, जो उसकी सही पकड़ है और उसकी अपनी जो मौलिकता है वो उसकी जांच भी हो पाती है। आपने देखा कि दाल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उसके बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने 2-3 स्टेटमेंट दिए और सरकार ने शायद करीब 3 सप्ताह पहले ही ये फैसला किया था कि अब वो विदेशों से दाल आयात करेगी और भारत में लगभग 7,000 टन दाल का आयात हो भी गया है। आपको आंकड़े भी मालूम होंगे कि वो दाल जो 6 महीने पहले लगभग 80-100 रुपये किलो के आसपास थी आज लगभग 125 रुपये किलो हो गई है, मतलब एक बेतहाशा महंगी हुई है दालें। इसके बारे में जो हमारे देवेंद्र शर्मा हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका स्टेटमेंट भी आज मैंने अखबार में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि नहीं, दाल की हमारे देश में कमी नहीं है, बेसिकली ये जमाखोरी है। और उन्होंने कहा कि दाल की जो कीमत है, जो किसान दाल पैदा करता है उसको 45 रुपये किलो के रेट मिलते हैं, 10 रुपये किलो उसकी प्रोसेसिंग में लग जाती है, 55 रुपये किलो, और आज वही 55 रुपये किलो की दाल आज 200 रुपये किलो के लगभग बिक रही है। ये उनका अपना स्टेटमेंट है। दोस्तों अब इसके माध्यम से हम इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी चीजों को समझेंगे। नो डाउट सच पूछे तो मैं यहां क्लास में चर्चा भी करता हूं और मेरे फर्स्ट और सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं इकोनॉमिक्स की इस बेसिक थ्योरी को, और अभी जो थर्ड बैच अक्टूबर में आने वाला है वो भी इसे बहुत अच्छी तरह से यहां से समझ कर जाएगा कि ये पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है सच पूछे तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर काम करती है। आप उस डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, या पकड़ते हैं तो आपका पकड़ने का रास्ता कौन सा है, वो अब आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है, आपकी अपनी उस भेदक दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप भेद के उस जो सतह पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे भेद कर अंदर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार ये मान करके चल रही कि हमारे यहां दाल का उत्पादन कम हुआ है, मांग ज्यादा है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो अब इस महंगाई को, इस मांग की पूर्ति को अगर पूरा कर दिया जाए, जो मांग बढ़ रही है इसकी अगर पूर्ति कर दी जाए, तो स्वाभाविक रूप से कीमतें गिर जाएंगी, और इसीलिए विदेशों से 7,000 टन दाल का आयात किया गया है, यानी कि सप्लाई बढ़ा दी गई है। सरकार को लग रहा है कि कीमतें गिर जाएंगी, डेफिनेटली कुछ समय के लिए गिरेंगी भी, वो तो अर्थशास्त्र का सिद्धांत ही है, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये स्थिति बनी रहती है। अब दालों के उत्पादन पर आप एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लीजिए कि खासकर हमारी पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था में जो दालें हैं उनकी क्या स्थिति है, कितना परसेंट हम दाल उत्पादन करते हैं, फिर जो दाल उत्पादन करने वाला किसान है वो कितने फायदे में रहता है, क्यों हम दाल को प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार ने जब राजीव गांधी जब जी आए थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो मिशन भी शुरू किए थे जिसमें दाल और तिलहन मिशन थे। तिलहन मिशन का तो मुझे बहुत अच्छे से याद ही है कि जो तिलहन का उत्पादन हम बढ़ाएं, ताकि जो खाद्यान्न जो तेल है, जो खाद्य तेल है, क्योंकि हमें उस समय पहले 1980 के आसपास बाहर से बहुत ज्यादा तेल आयात करना पड़ता था खाने वाला तेल, तो तिलहन का उत्पादन बढ़ाने से अब उस पर काफी कुछ उसमें काफी कुछ कमी आई है। तो दालों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या स्टेप उठा रही है, क्या क्या और करना चाहिए, तो इस पर आपको एक छोटा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए। अब आप देखेंगे मित्रों कि जो एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है, जो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है कि बिजनेस फ्री होता है, सरकार के अपने रूल्स रेगुलेशंस तो होते हैं, उस पैरामीटर्स में आप पूरी तरह से व्यापार करने को स्वतंत्र हैं, और जो ये जो बाजार होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो बाजार होता है, ये प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है, स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा, फ्री कॉम्पिटिशन, राइट। अब इस फ्री कॉम्पिटिशन में होता क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके पास बहुत ताकत है, पैसों की बहुत बड़ी ताकत है, वो अपने पैसों के ताकत के दम पर प्रतिस्पर्धा को एक तरह से मोनोपोली में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये माने कि हिंदुस्तान में जितनी भी दालें पैदा हो रही हैं उनके 5 व्यापारी बहुत बड़े बड़े खरीदार हैं, वो दालों का ही काम करते हैं और उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, और सच में जिनके पास रुपए हैं तो अरबों खरबों का कोई मतलब समझिए कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। अब वो करते ही है कि सब सीजन होता है दाल का, तो वो सारे के सारे दाल खरीदो, और जब सीजन होता है तो सस्ते में ही दालें मिलेंगी, खरीदो और इसके बाद उसको गोडाउन में रख दो, और इसके बाद धीरे 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 उसको बेचो, स्केयरसिटी पैदा कर दो, बाजार में उसकी कमी पैदा कर दो, क्योंकि सारा कंट्रोल तो उनके पास है, और जब रेट बेतहाशा बढ़ जाए, तिगुने हो जाए, चौगुने हो जाए, तब फिर बेचना शुरू करो। तो इसे हम कहते हैं जमाखोरी। नो डाउट कि सरकार के पास जमाखोरी को भी नियंत्रित करने के लिए कानून है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मित्रों, ये जो पूंजीवादी समाज होता है, और खासकर आर्थिक उदारीकरण के बाद अब दुनिया पूंजीवादी समाज की ओर ही बढ़ रही है, ये एक उसका एक छोटा सा रूप कहीं ना कहीं दालों में भी दिखाई दे रहा है, दालों की कीमतों में दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले वो प्याज की कीमतों में दिखाई दिया, और शायद देवेंद्र शर्मा जी ने, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, उसी ओर इशारा किया है। तो ये आपको आर्थिक उदारीकरण का जो प्रभाव है उसमें भी ये दाल का जो की जो घटना है, जो कीमत बढ़ने की बात है, वो काम आ सकते हैं। मित्रों, दैनिक भास्कर में आज एक बहुत अच्छा एक एडिटोरियल कमेंट है, और उस कमेंट में ये दिया हुआ है कि एक एजेंसी है क्रेडिट सुइस एजेंसी, उसमें ये दिया हुआ है कि जो विश्व का धन है उसका बंटवारा कैसे हो रहा है। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भारत में जो सबसे धनी 1% लोग हैं, सबसे धनी टॉप पर जो 1% लोग हैं, तो देश का 53% वेल्थ उनके पास। आप सोच करके देखिए कि वो कितना ज्यादा डिफरेंस है, और जो 50% जो आबादी है उसके पास हमारे देश की सिर्फ 4.1% संपत्ति है। यह डिस्पैरिटी है, और जितने भी इस तरह के स्टडीज आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के बाद कि जो धनी और गरीब के बीच का जो फासला है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। धनी और धनी होते चले गए हैं और गरीब होते चले गए हैं। तो चूंकि आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव पर भी प्रश्न लगभग 2 साल तक तो पूछा ही गया है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मित्रों, ये AIR न्यूज़ के बारे में थी। अब मैं न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ चर्चा आपसे कर रहा हूं। दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स की बात अभी मैंने आपको बताई, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज के आर्थिक जागरण में, आर्थिक सुधारों की दिशा, जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाल वाला का है। मैं आपको बता चुका हूं कि डॉक्टर भरत झुनझुनवाल इस मायने में मुझे बहुत पसंद आते हैं कि उनके उनके लेखन में आपको एक नई सोच मिलेगी और बड़ी प्रैक्टिकल सोच होती है। जैसे इन्होंने अभी निवेश के बारे में बताया कि भारत भी लगातार कोशिश में है कि विदेश से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में हो। इन्होंने सतर्क किया है और सतर्क करने के दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका यानी कि जो लैटिन अमेरिकी देश है उसके उदाहरण भी दिए हैं कि लैटिन अमेरिकी देश में क्या हुआ कि बाहर से बहुत निवेश आने लगा और वहां की सरकार से कहा गया कि आप अपना निवेश बंद कीजिए, आप अपने खर्चे कम कीजिए। नतीजा यह हुआ कि बाहर का निवेश जो आया वो निवेश, उस निवेश पर पूरा कंट्रोल बाहर के लोगों का था, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि जो बाहर का जो निवेश आता है चूंकि उस पर निजी लोगों का कंट्रोल होता है तो वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता। तो उन्होंने सजेशन दिया है कि ठीक है बाहर के निवेश को आप आमंत्रित कीजिए लेकिन साथ ही साथ सरकारी निवेश जारी रहना चाहिए, भले ही आपको उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा क्यों ना छापनी पड़े, मुद्रा निर्गमित कीजिए। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा मुद्रा आएगी तो मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी, जब मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी तो मुद्रा की कीमत कम होगी, जिसको हम एक तरह का इन्फ्लेशन कहते हैं यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहां उन्होंने सजेशन दिया कि सवाल मुद्रा को छापने का नहीं है कि आप कितने नोट छाप रहे हैं, सवाल इस बात का है कि जो नोट आप छाप रहे हैं उसका आप इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। अगर उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किया गया तो फिर यही डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में उत्पादित करेगा चीजों को, हमारे लिए वो रिसोर्सेज बन जाएगा और जब उससे चीजें उत्पादित होने लगेंगी तो फिर चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि तब लोगों की फिर आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ने के कारण हमारा मार्केट तैयार होगा, उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग इसको पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि दालों के माध्यम से और अभी डॉक्टर भरत झुनझुनवाला के इस आर्टिकल के माध्यम से जो थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा की है उसमें आपको एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र की झलक डेफिनेटली रूप दिखाई दी होगी दोस्तों। और तीन चार आर्टिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी आर्टिकल्स हिंदी में ही हैं, केवल एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है जो खासकर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन ने बांध बना करके बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात कही है, मैंने अंडरलाइन कर लिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है खासकर भारत और चीन के संबंधों को लेकर। मित्रों अब मैं आता हूं ईमेल पर। आज मेरे पास प्रद्युम्न मिश्रा का ईमेल है जो मऊ वाराणसी, उन्होंने दोनों के लिए लिखा है कि जो भी स्टूडेंट मऊ और वाराणसी से आ रहे हों वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रद्युम्न मिश्रा भी अक्टूबर में भोपाल में एकेडमी की क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, तो जो और भी स्टूडेंट उनके एरिया से क्लास अटेंड करने को आ रहे हों वो उनसे बात कर सकते हैं। प्रद्युम्न मिश्रा का मोबाइल नंबर है 7376874869। मित्रों एक मेरा मेल है कुश का जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, जिन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि अभी सिविल सर्विस के पूरे एग्जाम के पैटर्न और दूसरी चीजों को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है, तो उनको इस बात का डर है कि कहीं वो कमेटी जो एज लिमिट है उसे एकदम से न घटा दे, उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुछ मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि देखिए पहली बात तो अभी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट देने के बाद सरकार उसके लिए बाध्य नहीं होती, सरकार उस पर विचार करेगी। और यदि एज लिमिट कम भी की जाएगी तो आप हम जनरली ये होता रहा है कि वो अचानक कम नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सरकार कुछ बीच में समय देती है कि भाई 2 साल के बाद 3 साल के बाद इसे वो लागू करेगी ताकि स्टूडेंट्स का नुकसान न होने पाए। इसलिए आप इसको लेकर के बिल्कुल भी चिंतित न हो, आप अपना काम करें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मित्रों अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उन सभी अपने नौजवान दोस्तों के प्रति जिन्होंने मेल लिखे हैं। और इनमें से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, सिद्धार्थ गौरव नेवी में काम करते हैं विशाखापट्टनम से, दिलीप मिश्र मऊ उत्तर प्रदेश से, आस्था गर्ग नागपुर से, विश्राम मीना, अर्जुन सूर्यवंशम गोरखपुर से, निखिल सिरगावे कोल्हापुर महाराष्ट्र से, सुप्रिया सीतापुर से, मयंक त्रिवेदी रविंद्र सिंह नई दिल्ली से, संतोष गुप्ता वाराणसी से, अंशिता गोरखपुर से, दिव्यास्त्र शुक्ल कानपुर से और पूजा राजपूत, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इन्हीं में से जो दो सबसे अच्छे मेल रहे हैं वो हैं, उसमें एक पहला मेल है तनुप्रिया सिंह का दिल्ली से और दूसरा मेल है आस्था गर्ग का नागपुर से। आप दोनों तनुप्रिया और आस्था अपनी लैंग्वेज को इसी तरह से बनाए रखें और देखें कि और कितना अच्छा आप कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देते हैं। मेरा अभिवादन आप सबके लिए है। नमस्कार।